फेडरल सरकार ने सोमवार को अपर हाउस में सीनेट वोटिंग रिफॉर्म का लेजिस्लेशन प्रस्तुत कर दिया और उम्मीद की जा रही है कि इसे 17 मार्च तक पास करा लिया जाएगा। प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल के अनुसार इस बदलाव का मकसद मतदाताओं को ताकत देते हुए कथित बैकरूम प्रीफरेंस डील्स को खत्म करना है, लेकिन लेबर पार्टी का आरोप है कि सरकार बिना पब्लिक कंसल्टेशन को पूरा समय दिए जल्दबाजी में ये कदम उठा रही है। चूंकि 30 साल से ज्यादा की अवधि में सीनेट वोटिंग के बारे में ये बेहद महत्वपूर्ण रिफॉर्म है, शायद इसीलिए यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के संवैधानिक कानूनों के जानकार जॉर्ज विलियम्स कहते हैं कि इसका ठीक होना जरूरी है।
I think this bill should be passed. We do need to reform the Senate voting system, but before it is passed, the bill needs to be fixed. In particular, the bill does not give voters the choice they should have between candidates, and it gives too much power to the major parties to themselves determine which of their candidates are elected.
इन बदलावों से विवादास्पद ग्रुप वोटिंग टिकट्स खत्म हो जाएगा। आलोचकों के अनुसार इसी की वजह से राजनीतिक दल कथित प्रीफरेंस डील्स के माध्यम से तय करते थे कि सीनेट के लिए कौन चुना जाएगा। इन बदलावों के बाद मतदाता को लाइन के ऊपर कम से कम 6 बॉक्स को नंबर देने होंगे, लेकिन जो लोग सिर्फ एक बॉक्स में नंबर देंगे उनका वोट भी गिना जाएगा। प्रोफेसर विलियम्स कहते हैं कि ये सिस्टम जो ऑप्शनल प्रीफरेंशियल वोटिंग के नाम से जाना जाता है लाइन के नीचे भी लागू होना चाहिए। इस समय लाइन के नीचे मतदाता को सभी बॉक्सेस को नंबर देने होते हैं। प्रोफेसर विलियम्स कहते हैं कि इन बदलावों का मकसद चुनाव में मतदाताओं को फैसला लेने का अधिकार देना है।
Having a voting system that requires someone to sequentially number up to 110 boxes is not a system people are going to be disposed to use, and it creates a very major disincentive for people who may actually want to vote for individual candidates. That's really not acceptable, and the result is to place very great power in political parties to themselves determine who gets elected at the party level, and you lock voters out of making a choice they might otherwise be disposed to make.
सीनेट में इस मुद्दे पर गर्मागर्म बहस भी हुई, जिसमें छोटी और बड़ी दोनों तरह की पार्टियों के सदस्यों ने एक दूसरे पर निजी स्वार्थ में काम करने का आरोप लगाया। फाइनेंस मिनिस्टर मैथिस कॉर्मन के सीनेट में बिल पेश करने के बाद लेबर सीनेटर स्टीफन कॉनरॉय ने कहा कि सरकार जनता का पक्ष सुनने के लिए कम समय दे रही है।
The majority of Australians who might have an interest in this issue are being denied an opportunity to put forward their point of view. They're being denied an opportunity to attend and participate as a witness. And then we're going to have it rammed through with a report.
हालांकि सीनेटर कॉर्मन ने इन आरोपों से इंकार कर दिया।
That is completely false. That has never been the government's intention. That has never been the government's intention. The government's intention always has been to commence this debate in the Senate this week. So our intention would be for the debate to continue and certainly to continue into the subsequent sitting week, which I believe is the week of the 15th of March.
Greens Party के नेता Richard D. Netley कहते हैं कि लेबर पार्टी की ज्यादा समय देने की मांग गैर जरूरी है।
They don't support the legislation. So what they're doing is they're hiding behind process. Like cowards, it's all about the process. The truth is they don't support giving power back to voters. They don't support it.
वहीं फैमिली फर्स्ट सीनेटर बॉब डे कहते हैं कि इस बिल से छोटी पार्टियों के सदस्यों का सफाया हो जाएगा, इसलिए वे इसका विरोध करेंगे।
You need independent people who don't toe a party line in this place. Independents play a vital role in this place. Now, Mr. President, I accept that on my own, I'm a nobody in this place. However, as one of 79 minor parties and independents who ran at the last election, we will not take this lying down.
वहीं दूसरी तरफ इन बदलावों पर हुई पब्लिक हियरिंग में ऑस्ट्रेलिया के इलेक्टोरल कमिश्नर टॉम रॉजर्स ने कहा कि प्रस्तावित बदलाव यदि लागू हो जाते हैं तो कमीशन को इस पर नए सिरे से काम करना होगा.
I've provided indicative advice on costings and resource implications and an estimated 3-month minimum time frame to implement the changes. However, I do wish to emphasise that this estimation and all associated advice is based on the broad shape of the current proposal. Should the bill change significantly, the AEC will need to revise its timing, cost and other resource estimates.
यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के एडजुएंट प्रोफेसर एंथोनी ग्रीन कहते हैं कि वर्तमान सिस्टम का इस्तेमाल राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए करती हैं.
You have been hurting people above the line for the last 3 decades by making the choice of how to vote asymmetrical. You can walk in, or you can vote one, or you've got to fill in every box below the line. It's a hurting process to make people vote above the line.
लेकिन दूसरी तरफ पॉलिटिकल कमेंट्रेटर मेलकम मैक्रेस चेतावनी देते हैं कि इन बदलावों के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील भी की जा सकती है.
I look forward to the inevitable High Court case with both fear and delight. My fear is that the court will use the precedent of McKenzie to give the okay to a rotten piece of legislation. My delight is at the prospect of the court striking down the enactment and telling the grubby politicians how to enact a decent reform.
इस बीच पब्लिक हियरिंग के दौरान प्रधानमंत्री मेलकम टर्नबुल ने कोएलिशन पार्टी रूम को कुछ यूं भरोसा दिलाया.
Institutional reform is important right across the board. The Senate has not been representative of the will of the people because, as we know, voters have had their preferences determined by backroom deals, by preference whisperers who have constructed these masses of parties, of these micro parties, often with the same public officers, negotiating with themselves. So people have voted in for one party and their preferences ended up with a party whose objectives apparently are completely at odds with the one they thought they were voting for.